एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड ह्यूम की ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। नाम थोड़ा भारी है ना?
हाँ, नाम सुनकर लग सकता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, पर यकीन मानिए ये किताब अंदर से बेहद दिलचस्प है। मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान और आज हम इसी के कुछ अहम विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और देखिए, ये किताब कोई आज की नहीं है, लगभग 300 साल पहले लिखी गई थी।
सही कहा, पर कमाल की बात यह है कि इसके आइडियाज आज भी उतने ही ताजे लगते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इंसान आखिर हैं क्या, कैसे सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं।
और ये सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब हम तय कैसे करते हैं, ये सारे सवाल आज भी उतनी अहम है, शायद पहले से ज्यादा, मनोविज्ञान हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी।
हाँ, हर जगह इसका असर दिखता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि ह्यूम के इन गहरे विचारों को थोड़ा खोलें, आसान भाषा में समझें, देखें कि उनकी मुख्य बातें क्या थीं
और वो आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मानव स्वभाव की इस अनोखी खोज को।
तो पहले बात करते हैं लेखक की, डेविड ह्यूम। ये साहब 18वीं सदी के स्कॉटलैंड के थे, 1711 से 1776 तक। दार्शनिक, इतिहासकार, निबंधकार, कई टोपियां पहनते थे ये।
हाँ, और अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माने जाते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ह्यूम ज्यादातर सेल्फ टॉट थे, मतलब खुद ही पढ़ लिखकर इतने बड़े विचारक बन गए।
बिल्कुल, कहते हैं यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू की थी पर मन नहीं लगा, छोड़ दी।
हाँ, उनका मन तो फिलॉसफी और लिटरेचर में रमता था, फिर फ्रांस वगैरह गए, खूब पढ़ा, और ये जो किताब है ट्रीटीज, ये उन्होंने अपनी 20s के आखिर में ही लिख डाली थी। सोचिए जरा,
शायद यही बात उन्हें खास बनाती है। वो जो एकेडमिक दुनिया का एक बंधा बंधाया ढर्रा होता है ना, उससे वो थोड़े अलग थे, इसीलिए शायद वो जमे जमाए विचारों पर इतने बेबाक सवाल उठा पाए।
और उनकी खासियत क्या थी, मतलब उनके सोचने का तरीका कैसे अलग था?
देखिए, ह्यूम सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करते थे, वो बड़े ध्यान से देखते थे कि इंसान का दिमाग असल में काम कैसे करता है। उनके लिए सबसे बड़ा गुरु था अनुभव, एक्सपीरियंस। वो सिर्फ तर्क पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक सच्चाई पर जोर देते थे।
अच्छा,
उनका सपना भी बड़ा था, वो बनना चाहते थे नैतिक विज्ञान का न्यूटन। जैसे न्यूटन ने प्रकृति के नियम बताए, वैसे ह्यूम खोजना चाहते थे मानव स्वभाव के नियम।
वाह, बड़ा एम्बिशन था, लेकिन सुना है कि जब ये किताब छपी तो चली नहीं।
हाँ, ये भी एक मजेदार किस्सा है। ह्यूम ने खुद मजाक में कहा था कि ये किताब तो प्रेस से मुर्दा पैदा हुई, मतलब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया शुरू में।
तो फिर
बाद में धीरे धीरे लोगों को इसकी अहमियत समझ आई। आज इसे वेस्टर्न फिलॉसफी की सबसे जरूरी किताबों में गिना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़े विचारों को समय लगता है अपनी जगह बनाने में।
बिल्कुल, तो अब आते हैं किताब पर, ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसका मकसद क्या था?
देखिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। ह्यूम कोशिश कर रहे थे मानव स्वभाव का एक पूरा विज्ञान बनाने की। और इसकी नींव क्या थी? एक सीधा सा विचार, हमारा सारा ज्ञान, सारी समझ सिर्फ और सिर्फ अनुभव से आती है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बस वही है ज्ञान का स्रोत।
अच्छा, तो अनुभव ही सब कुछ है, यहीं से फिर बात आगे बढ़ती होगी।
हाँ, और यहीं से ह्यूम उन विचारों को चुनौती देते हैं जो सदियों से चले आ रहे थे। उनका सबसे बड़ा दावा शायद ये है कि हम इंसान तर्क यानी रीजन से कम चलते हैं और अपनी भावनाओं और आदतों से ज्यादा।
ओ, ये तो उल्टी बात हो गई, हम तो सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं।
हाँ, ह्यूम इसी सोच पर परवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान उतना पक्का, उतना निश्चित है ही नहीं जितना हम मानकर चलते हैं, बल्कि ज्यादातर चीजें जिन पर हम यकीन करते हैं वो हमारे तर्क का नतीजा नहीं बल्कि हमारी मनोवैज्ञानिक बनावट, हमारी भावनाओं और आदतों की देन है।
ये तो सोचने वाली बात है।
इस किताब के मोटे तौर पर तीन हिस्से हैं। पहला है समझ, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, मतलब हम जानते कैसे हैं, हमारी जानने की सीमाएं क्या हैं।
ठीक है।
दूसरा हिस्सा है भावनाओं पर, हमारी इच्छाएं, हमारा गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सब कैसे काम करते हैं, तर्क और भावना का रिश्ता क्या है।
और तीसरा
है नैतिकता पर, हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं, क्या ये कोई दैवीय नियम है या तर्क से आता है या कुछ और। तो ये किताब एक तरह से पाठक को निश्चितता से संदेह की यात्रा पर ले जाती है।
मतलब ये दिखाती है कि हमारे कई गहरे विश्वास असल में तर्क पर नहीं बल्कि हमारे मन के काम करने के तरीकों पर टिके हैं।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये ज्यादा इस बारे में है कि हम उस दुनिया को, खुद को और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर विश्वास बनाते कैसे हैं। एक तरह से हमारे दिमागी सॉफ्टवेयर का एनालिसिस है ये।
चलिए तो फिर पहले हिस्से में चलते हैं, समझ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। यहाँ ह्यूम ज्ञान की जड़ें खोद रहे हैं।
हाँ, यहाँ वो शुरू करते हैं एक बुनियादी फर्क से। वो कहते हैं हमारे दिमाग में जो भी कुछ है वो दो तरह का होता है, इम्प्रेशंस और आइडियाज।
इम्प्रेशंस और आइडियाज, ये क्या है?
इम्प्रेशंस मतलब हमारे सीधे ताजे जीवंत अनुभव। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये एक इम्प्रेशन है। या अगर हाथ में गर्म चाय का कप हो तो उसकी गर्माहट, ये बहुत ताजे और तेज होते हैं।
ठीक, और आइडियाज?
आइडियाज इन्हीं इम्प्रेशंस की फीकी धुंधली नकलें या यादें होती हैं। जैसे बाद में उस आवाज के बारे में सोचना या उस गर्म कप को याद करना, वो ताजगी, वो तेजी नहीं होती इनमें।
अच्छा, मतलब अनुभव सीधा और तेज और उसकी याद या विचार धुंधला।
हाँ, और यहीं से ह्यूम का कॉपी प्रिंसिपल आता है। वो कहते हैं कि हर सरल आइडिया किसी ना किसी इम्प्रेशन से ही कॉपी होता है। मतलब बिना किसी अनुभव के दिमाग में कोई नया सरल विचार आ ही नहीं सकता।
यानी दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह है जो अनुभव से भरती है।
कुछ वैसा ही। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये आइडियाज दिमाग में अलग थलग पड़े रहते हैं या जुड़ते भी हैं?
जुड़ते तो होंगे ही, जैसे एक ख्याल से दूसरा आता है।
बिल्कुल, ह्यूम कहते हैं ये तीन मुख्य तरीकों से जुड़ते हैं। पहला है समानता, रिजेम्ब्लेंस। एक जैसी दिखने वाली चीजों के आइडियाज जुड़ जाते हैं, जैसे एक तस्वीर देखकर असल इंसान की याद आना।
ठीक है।
दूसरा है समय या स्थान में निकटता, कंटिग्यूटी। जो चीजें अक्सर एक साथ या एक जगह होती हैं उनके आइडियाज जुड़ जाते हैं, जैसे स्कूल का ख्याल आते ही क्लासरूम का ख्याल आना।
और तीसरा, आपने कहा था तीन है?
तीसरा सबसे जरूरी है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे बिजली कड़कने का आइडिया बारिश के आइडिया से जुड़ा है, या धुएं का आइडिया आग के आइडिया से। ह्यूम मानते थे कि हमारे सोचने में ये कारण प्रभाव वाला कनेक्शन सबसे ताकतवर है।
हाँ, ये तो है, हम हर चीज का कारण ढूंढते रहते हैं।
और यहीं पर ह्यूम ने वो दार्शनिक बम फोड़ा जिसने सबको चौंका दिया। इसे कहते हैं कारणता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉजेशन।
कारणता की समस्या, ये क्या है?
हम सब मानते हैं कि एक चीज दूसरी चीज का कारण बनती है ना? जैसे मैंने स्विच दबाया, कारण, और बत्ती जल गई, प्रभाव। गेंद फेंकी, कारण, तो वो आगे बढ़ी, प्रभाव। हम मानते हैं कि कारण और प्रभाव के बीच एक जरूरी रिश्ता है, एक शक्ति है जो कारण को प्रभाव पैदा करने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये तो हम रोज देखते और मानते हैं।
इसमें क्या समस्या है?
ह्यूम पूछते हैं, क्या हम सचमुच उस शक्ति को, उस जरूरी रिश्ते को देखते हैं या बस कुछ और देखते हैं? क्या देखते हैं हम देखते हैं कि स्विच दबाया और फिर बत्ती जली, गेंद फेंकी और फिर वो हिली।
बिल्कुल, ह्यूम कहते हैं हम सिर्फ दो चीजें देखते हैं। एक, दोनों घटनाएं एक दूसरे के पास होती हैं, समय और स्थान में। इसे वो कहते हैं कंटिग्यूटी। और दो, वो हमेशा एक के बाद एक होती हैं। जब भी ए होता है उसके बाद बी होता है। इसे वो कहते हैं कांस्टेंट कंजंक्शन, लगातार संयोग।
तो वो शक्ति या जरूरी कनेक्शन कहाँ गया?
ह्यूम कहते हैं वो हमें कभी दिखता ही नहीं। हमने करोड़ों बार सूरज को पूरब से निकलते देखा है, पर क्या हमने वो ताकत देखी जो उसे रोज निकालती है? नहीं, हमने बस ये देखा कि रात के बाद सुबह होती है और सूरज निकलता है। तो फिर ये कारण कार्य का पक्का वाला यकीन कहाँ से आ गया हमारे अंदर, अगर हमने उसे देखा ही नहीं?
सही सवाल है, तो फिर कहाँ से आया ये यकीन?
ह्यूम का जवाब चौंकाने वाला है। वो कहते हैं ये यकीन तर्क से नहीं आता बल्कि आदत, कस्टम और हैबिट से आता है।
आदत से?
हाँ, जब हम बार बार, हजारों बार दो घटनाओं को एक साथ होते देखते हैं, कांस्टेंट कंजंक्शन, तो हमारा मन आदी हो जाता है, उसे आदत पड़ जाती है। फिर जब हम पहली घटना ए को देखते हैं तो हमारा मन अपने आप दूसरी घटना बी की उम्मीद करने लगता है।
अच्छा,
यही उम्मीद की जो भावना है, जो मनोवैज्ञानिक एहसास है, उसी को हम गलती से जरूरी कनेक्शन समझ बैठते हैं। हमें लगने लगता है कि ए में कोई शक्ति है जो बी को पैदा कर रही है, पर असल में ये सिर्फ हमारे मन की आदत है जो हमें ऐसा महसूस कराती है।
बापरे, मतलब जिसे हम दुनिया का नियम समझते हैं वो बस हमारी आदत है। ये तो विज्ञान की नींव पर ही सवाल उठा दिया।
बिल्कुल, ये हूम का सबसे क्रांतिकारी और विवादास्पद विचार था। ये कहता है कि दुनिया के बारे में निश्चित ज्ञान पाने के हमारे दावे शायद उतने मजबूत नहीं हैं।
वाकई दिमाग घूम गया ये सुनकर। अच्छा, और वो मैं वाली बात आपने कहा था, उस पर भी सवाल उठाया?
हाँ, उसे कहते हैं बंडल थ्योरी ऑफ सेल्फ। ये भी उतना ही चौंकाने वाला है। ह्यूम कहते हैं, जरा आंखें बंद करके अपने अंदर झांकिए। क्या आपको कोई एक टिका हुआ स्थायी मैं महसूस होता है? एक ऐसा मैं जो हमेशा वही रहता है, चाहे आपके विचार, भावनाएं या हालात बदलते रहें।
कोशिश करूं तो क्या मिलता है? शायद कोई ख्याल आ रहा है, कोई एहसास, कोई पुरानी याद, शरीर में कोई सनसनी, ये सब तो बदलता रहता है।
बिल्कुल, ह्यूम कहते हैं कि हमें बस यही मिलता है, विचारों, भावनाओं, यादों, एहसासों की एक लगातार बहती हुई धारा, एक के बाद एक, तेजी से बदलते हुए। तो वो स्थिर परमानेंट मैं कहाँ है जो इन सब का अनुभव कर रहा है?
तो ह्यूम का जवाब क्या है?
उनका जवाब है, ऐसा कोई स्थायी मैं है ही नहीं। हम जिसे मैं या सेल्फ कहते हैं वो असल में इन लगातार बदलती हुई धारणाओं, परसेप्शंस का एक बंडल, एक गठरी, एक कलेक्शन मात्र है।
क्या मतलब? तो मैं एक भ्रम है ह्यूम के अनुसार? हाँ, ये मैं की जो कहानी है कि मैं वही हूँ जो कल था और परसों भी रहूँगा, ये कहानी हमारा मन खुद ही गढ़ लेता है। कैसे? याददाश्त और कल्पना के सहारे इन बिखरे हुए अनुभवों को जोड़कर एक निरंतरता का एहसास पैदा कर लेता है। पर असल में कोई एक चीज़ नहीं है जिसे मैं कहा जा सके, हम बस अनुभवों का एक प्रवाह है।
ये तो व्यक्तिगत पहचान के पूरे कॉन्सेप्ट को ही हिला देता है। अगर मैं स्थिर नहीं है तो फिर
बहुत सारे सवाल उठते हैं।
बिल्कुल,
ये ह्यूम के सबसे गहरे और परेशान करने वाले विचारों में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी किताब पर, भावनाएं, ऑफ द पैशंस।
हाँ, यहाँ ह्यूम तर्क और भावना के रिश्ते को देखते हैं, और यहीं पर उनका वो सबसे मशहूर कथन आता है जो अक्सर कोट किया जाता है, तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए।
रीजन इज एंड ऑट ओनली टू बी द स्लेव ऑफ द पैशंस।
गुलाम? तर्क गुलाम है भावनाओं का? ये क्या बात हुई, हम तो सोचते हैं तर्क ज्यादा जरूरी है। देखिए, ह्यूम ये नहीं कह रहे कि तर्क बेकार है, तर्क बहुत काम का है। वो हमें ये बता सकता है कि अगर हमें कुछ चाहिए जो कि एक भावना या जुनून है, तो उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वो हमें लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है।
अच्छा, मतलब एक टूल की तरह?
बिल्कुल, तर्क हमें ये भी बता सकता है कि हमारा लक्ष्य शायद गलत जानकारी पर आधारित है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारी मंजिल क्या हो, ये कौन तय करता है? ह्यूम कहते हैं ये हमेशा हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे जुनून, पैशंस ही तय करते हैं।
मतलब मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद, मुझे क्या करना है जीवन में, ये सब भावनाएं तय करती हैं।
हाँ, आपको गुस्सा आता है, आपको प्यार होता है, आपको किसी चीज की चाहत होती है, ये सब भावनाएं हैं। तर्क आपको बता सकता है कि गुस्से को कैसे काबू करें या अपनी चाहत कैसे पूरी करें, लेकिन वो चाहत पैदा नहीं कर सकता, वो इच्छा भावना से ही आती है। इसीलिए ह्यूम कहते हैं कि तर्क तो बस भावनाओं का नौकर है, उसका काम है भावनाओं के तय किए लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना।
ये तो पारंपरिक सोच को बिल्कुल उलट देता है। जहां तर्क को राजा माना जाता था, ह्यूम ने उसे सेवक बना दिया।
सही कहा, उन्होंने भावनाओं को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। उन्होंने गर्व और विनम्रता, प्रेम और घृणा जैसी भावनाओं का भी विश्लेषण किया कि वो कैसे हमारे स्वयं के विचार या दूसरों के विचार से जुड़कर पैदा होती हैं।
दिलचस्प है। अब आते हैं तीसरी किताब पर, नैतिकता, ऑफ मॉरल्स। यहाँ ह्यूम क्या कहते हैं, सही गलत का आधार क्या है?
यहाँ भी ह्यूम पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हैं। वो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से, जिसे बाद में है चाहिए समस्या, इज ऑट प्रॉब्लम कहा गया।
है चाहिए समस्या, ये क्या है?
ह्यूम ने देखा कि दार्शनिक और धर्मगुरु अक्सर ऐसा करते हैं कि वो पहले दुनिया के बारे में कुछ तथ्यात्मक बातें बताते हैं। क्या है इस स्टेटमेंट्स, जैसे इंसान स्वभाव से स्वार्थी है, और फिर अचानक वो इससे नैतिक नतीजों पर कूद जाते हैं। क्या होना चाहिए, ऑट स्टेटमेंट्स, जैसे इसलिए हमें ऐसे नियम बनाने चाहिए जो स्वार्थ को काबू में रखें।
हाँ, ऐसा तो होता है।
ह्यूम कहते हैं ये तार्किक रूप से गलत है। आप सिर्फ तथ्यों है से सीधे नैतिक आदेशों चाहिए पर नहीं पहुंच सकते। दोनों के बीच एक तार्किक खाई है। ये बताने के लिए कि क्या होना चाहिए, आपको तथ्यों के अलावा किसी भावना, किसी मूल्य, किसी पसंद नापसंद की जरूरत पड़ती है। तथ्य हमें बताते हैं कि दुनिया कैसी है, पर ये नहीं बताते कि वो अच्छी है या बुरी।
तो फिर अच्छाई बुराई का पता कैसे चलता है, अगर तर्क से नहीं, तथ्यों से नहीं, तो फिर कैसे?
ह्यूम का जवाब है हमारी नैतिक भावनाओं से।
नैतिक भावनाएं?
हाँ, जब हम कोई काम देखते हैं, जैसे कोई किसी जरूरतमंद की मदद कर रहा है, तो हमारे अंदर एक खास किस्म की अच्छी भावना, एक मंजूरी, अप्रूवल का एहसास पैदा होता है। और जब हम किसी को क्रूरता करते देखते हैं, तो एक बुरी भावना, एक नामंजूरी, डिस अप्रूवल का एहसास होता है।
अच्छा,
ह्यूम कहते हैं यही भावनाएं नैतिकता का असली आधार है। कोई काम अच्छा इसलिए है क्योंकि उसे देखकर हमें अच्छा महसूस होता है, और बुरा इसलिए है क्योंकि उसे देखकर बुरा महसूस होता है। नैतिकता तर्क का मामला कम और दिल का, भावनाओं का मामला ज्यादा है।
तो मतलब जो चीज समाज में ज्यादातर लोगों को अच्छी लगती है वो नैतिक मान ली जाती है।
मोटे तौर पर हाँ, ह्यूम न्याय, जस्टिस जैसी चीजों को कृत्रिम गुण मानते हैं। मतलब ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि समाज ने अपनी सुविधा और स्थिरता के लिए बनाए हैं। ये एक तरह के सामाजिक समझौते हैं, जबकि दया या परोपकार जैसे गुण प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, क्योंकि वो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छे लगते हैं बिना किसी समझौते के।
और इसमें सहानुभूति का क्या रोल है?
सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की वजह से हम दूसरों के सुख दुख को समझ पाते हैं और उन कामों को पसंद करते हैं जिनसे सबका भला हो। सहानुभूति हमें एक दूसरे से जोड़ती है और सामाजिक नैतिकता को संभव बनाती है।
तो अगर हम ह्यूम की इस पूरी किताब के निचोड़ को देखें, तो कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं?
हाँ, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली तो यही कि तर्क की अपनी सीमाएं हैं, वो सब कुछ साबित नहीं कर सकता, न ही वो हमारे जीवन का अकेला ड्राइवर है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए।
दूसरी,
अनुभव और आदत हमारी जिंदगी के असली गाइड हैं। ज्ञान अनुभव से शुरू होता है, लेकिन हमारे रोजमर्रा के ज्यादातर काम और विश्वास आदत से चलते हैं। ह्यूम की वो लाइन है ना, आदत जीवन की महान मार्गदर्शक है।
सही। तीसरी बात?
तीसरी, भावनाएं मानव स्वभाव की कुंजी हैं। वही हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे लक्ष्यों को तय करती हैं और हमारी नैतिकता का आधार बनती हैं। तर्क तो बस एक सहायक है।
चौथी,
नैतिकता और सामाजिक नियम कोई आसमानी चीज नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतें और सामाजिक समझौते हैं। न्याय जैसी चीजें समाज को ठीक से चलाने के लिए बनाई गई हैं।
और आखिरी, पांचवी बात?
वो मैं या सेल्फ वाली बात, कि ये कोई ठोस स्थायी चीज नहीं, बल्कि लगातार बदलते विचारों और एहसासों का एक प्रवाह, एक बंडल है।
ये सारे पॉइंट्स हमें अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। जैसे वो आदत वाली बात, हम सोचे तो कितने ही काम रोज बस आदत में कर डालते हैं ना।
बिल्कुल। या फिर देखिए कैसे आजकल पब्लिक बहसों में, राजनीति में, विज्ञापनों में तर्क से ज्यादा भावनाओं को अपील किया जाता है। डर, गुस्सा, उम्मीद। ह्यूम की बात आज भी कितनी सटीक लगती है।
हाँ, भारत में भी हम देखते हैं कैसे कई बार सामाजिक रीति रिवाज या परंपराएं तर्क पर हावी हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदत बन चुकी हैं। या कैसे नैतिक दुविधाओं में लोग अक्सर तर्क से ज्यादा अपनी भावनाओं या दिल की आवाज पर भरोसा करते हैं।
सही। और ह्यूम की किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो उनके विचारों का सार पकड़ लेती हैं, बड़ी यादगार है।
हाँ, कुछ कोट्स साझा करते हैं, जैसे वो सबसे मशहूर, तर्क जुनून का गुलाम है और होना भी चाहिए।
ये हमें याद दिलाता है कि अपनी भावनाओं को समझना कितना जरूरी है, उन्हें नकारने के बजाय उनके साथ काम करना सीखना होगा।
बिल्कुल। और दूसरा, आदत जीवन की महान मार्गदर्शक है।
ये हमें बताता है कि अगर जीवन में कुछ बदलना है तो सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, अपना माहौल बदलना होगा।
और वो मैं वाली बात पर, मन एक तरह का रंगमंच है जहां कई धारणाएं बारी बारी से प्रकट होती हैं, या ये कि पहचान केवल एक काल्पनिक है।
ये सुनने में थोड़ा असहज कर सकता है, पर शायद ये हमें खुद को लेकर थोड़ा कम गंभीर होने में मदद करें, ये समझने में कि बदलाव संभव है क्योंकि हम कोई पत्थर के लकीर नहीं है।
हाँ, और कारण कार्य पर उनका जो निचोड़ था उसे भी याद रखना चाहिए। हमारा कारण कार्य का विश्वास किसी देखी गई शक्ति पर नहीं, बल्कि घटनाओं के लगातार साथ होने की आदत पर आधारित है।
ये हमें सिखाता है कि हर चीज जो एक साथ होती दिखे उसे आंख मूंदकर कारण और प्रभाव न मान ले, सवाल पूछना, थोड़ा शक करना जरूरी है। ये सब ह्यूम के सोचने के तरीके की झलक देते हैं।
तो ये तो हो गई फिलॉसफी की बातें, क्या इन गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है?
अरे बिल्कुल है। देखिए, पहली चीज तो क्रिटिकल थिंकिंग। ह्यूम हमें सिखाते हैं कि किसी भी दावे को, किसी भी जानकारी को यूं ही ना मान ले, खासकर जब कोई कहे इस वजह से ऐसा हुआ, पूछें क्या सच में यही कारण है या बस ये दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं।
हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी है जहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है।
दूसरा, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। अगर भावनाएं ही हमें चलाती हैं तो ये पहचानना जरूरी है कि कब हमारे फैसले हमारी भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे बाजार में कुछ खरीदना हो या किसी से रिश्ता निभाना हो या ऑफिस में कोई फैसला लेना हो। ये समझ हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।
और ये भी पहचानने में कि कहीं कोई हमारी भावनाओं का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा।
बिल्कुल। तीसरा, नैतिक फैसलों में हम याद दिलाते हैं कि नैतिकता सिर्फ नियमों को फॉलो करना नहीं है, इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना यानी सहानुभूति रखना और हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा ये सोचना भी शामिल है। चौथा, पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास। अगर मैं कोई फिक्स चीज नहीं है तो इसका मतलब है कि हम बदल सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों, अपने पुराने डरों से बाहर निकल सकते हैं, हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाली सोच है ना?
हाँ, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। और पांचवा?
पांचवा, आदतें बनाने या तोड़ने में मदद। अगर ह्यूम सही है कि आदत इतनी शक्तिशाली है तो हमें अच्छी आदत बनाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि अच्छी आदत अपनाना आसान हो जाए और बुरी आदत मुश्किल।
जैसे?
कोई छोटा सा उदाहरण।
जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सिर्फ अलार्म लगाने से शायद बात ना बने, लेकिन अगर आप रात को ही अपने जूते और कपड़े तैयार करके रख दें तो सुबह उठकर शुरू करना आसान हो जाता है। आपने माहौल बदल दिया। ये ह्यूम के सिद्धांत का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
हाँ, ये बात तो समझ में आती है, छोटे बदलाव करके आदत को सपोर्ट करना, या जैसे किसी बहस में ये पहचानना कि सामने वाला तर्क दे रहा है या सिर्फ आपको डराकर या गुस्सा दिलाकर अपनी बात मनवाना चाह रहा है।
बिल्कुल, ह्यूम के विचार हमें ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। मेरे लिए तो ह्यूम को पढ़ने का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि तर्क की सीमाओं को जानना कहीं ना कहीं मुक्तिदायक है। ये मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, हर चीज पर पूरा नियंत्रण नहीं पा सकते, थोड़ा सुकून देता है। और वो बंडल थ्योरी भी, ये हमें शायद थोड़ा कम अहंकारी बनाती है।
हाँ, और मेरे लिए सबसे जरूरी सीख है भावनाओं की अहमियत को पहचानना। हम अक्सर भावनाओं को तर्क से कमतर आंकते हैं, पर ह्यूम दिखाते हैं कि वो कितनी बुनियादी और शक्तिशाली हैं, और उनका वो जो हल्का सा संदेहवाद है, हर चीज पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति, वो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। आंख मूंद कर किसी भी बात पर यकीन ना करना।
बिल्कुल, तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ह्यूम सही हैं और हमारा स्वयं या मैं कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि लगातार बदलता हुआ प्रवाह है, तो फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है?
हम किसे जिम्मेदार ठहराएं कि क्या आज की दुनिया जो डेटा, लॉजिक और तर्क पर इतना जोर देती है, कहीं ह्यूम की उस चेतावनी को नजरअंदाज तो नहीं कर रही कि दिन के आखिर में तर्क जुनून का गुलाम है?
इन सवालों पर सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।